ओम शांति। जब मैं पहली बार मधुबन आई और मेरा मिलन बाबा और मामा दोनों के साथ में इकट्ठा हुआ, तो बाबा ने कहा कि मामा ये तो कोई देव कन्या आई है। और मामा ने बड़े प्यार से मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि जानती हो देव कन्या किसको कहते हैं? तुम आदि देव ब्रह्मा और आदि देवी सरस्वती की कुमारी देव कन्या हो। याद आता है? तो मैंने गर्दन हिला दी, जी मामा। फिर बाबा ने कहा कि मामा इस बच्ची का भाग्य बहुत ऊंचा है और आप इसको ज्ञान से इतना अच्छी तरह से सजाओ, तैयार करो, तो ये जो छोटी बच्ची अगर बड़ी बड़ी सभाओं में जाकर भाषण करेगी तो कमाल करेगी और सब ऐसे कहेंगे कि ये किसकी बच्ची है, इतनी छोटी है और इतना अच्छा ईश्वर का ज्ञान देती है, तो इसके माँ बाप कैसे होंगे। तो बाबा को हमेशा ये रहता था कि छोटे छोटे बच्चे भी कुछ कमाल करके दिखला सकते हैं। तो मामा ने कहा जी बाबा। फिर मामा बाबा रोज छोटे छोटे भाषण लिखता था और मामा रोज मुझे भाषण के लिए तैयार करती थी। और फिर रात के समय एक तरफ बाबा एक तरफ मामा और बीच में मैं बैठी होती थी, बाबा कहता था भाषण करो, ऐसे समझो कि तुम बहुत बड़ी सभा के आगे भाषण कर रही हो, घबराना नहीं है। तो एक दिन मैं भाषण कर रही थी और भाषण में था एक श्लोक कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों भूल गया और मैंने कह दिया कि हम मात पिता तुम बालक मेरे। तो जो सामने बैठे हुए थे भाई बहन वो जरा हंसने लगे, तो बाबा ने शायद आंख से इशारा किया होगा, तो सब चुप हो गए। फिर जब क्लास पूरा हुआ, भाषण पूरा हुआ, तो बाबा ने मुझे बुलाया और कहा कि बताओ वो श्लोक कौन सा था, फिर से सुनाओ। तो मैं समझी कि बाबा को हमारा श्लोक बहुत पसंद आया है इसलिए बाबा पूछ रहा है। फिर मैंने वही रिपीट किया, हम मात पिता तुम बालक मेरे। तो मामा सामने बैठी थी बोला कि तुम गलत सुना रही हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे नहीं। तो मैंने कहा यही तो मैंने कहा था। कहा नहीं, आपने कहा था हम मात पिता तुम बालक मेरे। तो बाबा मुस्कराए, बाबा ने कहा नहीं नहीं, बच्ची ने ठीक कहा है मामा, जब तक बाबा को अपना वारिस नहीं बनाएंगे, बालक नहीं बनाएंगे, तो वर्षा कैसे मिलेगा। पहले बाबा को बनाना है, फिर बाबा बच्चों को अपना बनाता है। तो मैंने देखा कि बाबा भूल में भी भला कर देता था और मामा बाबा की एक एक आज्ञा को ऐसे मानती थी जैसे बाबा देख मामा देख रही है कि बाबा में, बाबा साधारण बाबा नहीं है, ब्रह्मा नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा समाया हुआ है। तो इस प्रकार से मामा ने मुझे सिखाया, पढ़ाया, आगे बढ़ाया और भाषण के लिए हमें अच्छी तरह से तैयार कर दिया। लेकिन मामा के साथ में रह के मामा के जीवन से मैंने बहुत कुछ सीखा कि मामा छोटी छोटी बातों पर भी अटेंशन देती थी, जरा भी किसी प्रकार की कमी मामा को अच्छी नहीं लगती थी। एक बार मामा गद्दी पर बैठी हुई थी, मैं भी पास में जाकर बाहर से आई थी, मामा के पास गद्दी पर बैठ गई और मामा से मैं समाचार सुनाने लगी। तो मामा ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मामा का ध्यान मेरे पैरों की तरफ गया और मामा ने मुस्कराते हुए कहा मोहिनी तुमने मोर देखा है? मैंने कहा जी मामा। बोला उसके पैर देखे हैं? मैंने कहा जी मामा। तो बोला मोर अच्छा है या उसके पैर अच्छे हैं? तो मैंने कहा मामा मोर अच्छा है लेकिन उसके पैर जो है ना, वो उस पर कोई रंग बिरंगे दाग नहीं है, वो तो ऐसे ही है, झिल्ली जैसे लगते हैं, इतने अच्छे नहीं लगते हैं। तो मामा ने कहा तुमने अपने पैर देखे हैं? तो मैं अपने पैर देखने लगी, मैंने कहा नहीं। फिर मैं जब देखा तो मेरे पैर नीचे से बड़े गंदे थे, तो मामा ने कहा कि देखो तुम सारी मोर जैसी हो, सुंदर हो, लेकिन तुम्हारे पैर बड़े गंदे टेढ़े हैं, तो इसलिए तुम अपने पैरों को भी ऐसे स्वच्छ ऐसे साफ रखो जैसे आपका चेहरा है। तो उस दिन से लेकर आज का दिन मेरे पैर इतने साफ रहते हैं कि सदा मुझे कभी कुछ गंदे भी हो तो ये याद आता है कि मामा ने मुझे कहा था कि तुम्हारे पैर भी ऐसे होने चाहिए जैसे शरीर के दूसरे अंग साफ सुथरे हैं। उस दिन से लेकर आज का दिन मैं अपने पैरों को सदा वो ध्यान में रख के साफ और सुथरा रखती हूँ। तो इतनी छोटी छोटी बातों पर भी मामा हमारा अटेंशन खिंचवाती थी। दूसरी बात, एक बार मैंने देखा कि हमें बाबा कोई आज्ञा देता तो हम कहेंगे बाबा ये कैसे करेंगे, ऐसे कैसे होगा, ये तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैंने ये देखा कि मामा को जब बाबा कुछ कहता था तो मामा कभी बाबा से कोई आर्ग्यू नहीं करती थी, लेकिन मामा हमेशा कहती थी जी बाबा जी बाबा। एक बार एक पार्टी जा रही थी तो मामा बाबा ने कहा मामा बाबा की दिल है कि इन बच्चों को साबूदाने का हलवा खिलाए, बनाएंगी? मामा ने कहा जी बाबा, और मामा तुरंत बनाने के लिए चली गई। मामा हलवा बनाने लगी और पार्टी का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा मामा आप हलवा बना रही, पार्टी तो जा रही है, हलवा कैसे मिलेगा, आप छोड़ दो। तो मामा मुस्कराई और कहा नहीं मुझे तो बनाना है। फिर बाबा नीचे बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, फाइनल विदाई वहां देता था, रुमाल हिलाता था और बच्चे आगे बस स्टैंड की तरफ चलते थे। फिर मैंने कहा मम्मा बाबा ने तो सारा उनको विदाई दे दी और वो रवाना हो गए हैं, हलवा तो बने ही नहीं, अभी क्या करेंगी, छोड़ दो। तो मम्मा कहती है कि नहीं, बाबा को पता है ना कि हलवा बनेगा या नहीं बनेगा टाइम पर, लेकिन बाबा ने आज्ञा दी है तो मैं हलवा बनाएगी और कुछ भी हो जाए मैं बीच में नहीं छोड़ूंगी। इतने में बाबा विदा करा के जब सब बच्चों को आया और आकर देखा किचन में कि मामा हलवा बना रही है, तो बाबा ने कहा कि मामा हलवा बन गया? बोला बस बाबा 5 मिनट में बन जाएगा। अब मामा उसको बनाने में लगी रही, बाबा देखता रहा, दृष्टि देता रहा, तो मामा ने 5-7 मिनट में हलवा बनाया और बाबा ने कहा बच्ची इसको डब्बे में डालो। मामा ने डब्बे में डाल दिया। फिर बाबा आसपास खड़े हुए भाइयों से पूछने लगा कौन जाएगा ये हलवा बस स्टैंड पर पार्टी को देने के लिए। तो एक भाई बोला बाबा मैं जाऊंगा। बोला पहुंचा दोगे? बोला हाँ बाबा पहुंचा देंगे, मैं फुल स्पीड से जाऊंगा। तो वो हलवा लेकर थैले में डब्बे में डाल के गया और बस थोड़ा स्टार्ट हुई थी तो उसने दूर से देखा, हाथ से चिल्लाना, मुंह से चिल्लाना, हाथ से ऐसे ऐसे रोका कि रुको रुको रुको। उसने सोचा पता नहीं कंडक्टर ने सोचा क्या बात है जो ये बस रोक रहा है, उसने रोक दिया। जब वो पास में आया तो पार्टी के लोग सामने आए, उनका क्या हुआ? तो कहा बाबा ने हलवा भेजा है। तो कंडक्टर ने कहा थोड़े से हलवे के लिए तुमने बस रोक दी? तो उसने कहा थोड़ा सा हलवा नहीं है, कामन हलवा नहीं है, अरे भगवान ने अपने बच्चों के लिए बड़े प्यार से बना के भेजा है। तो जो पार्टी जा रही थी उसने जब देखा कि हलवा बाबा ने हमें बनवा के यहाँ तक भेजा है तो उसका दिल इतना पिघल गया कि बाबा इतना प्यार हम बच्चों को करते हैं, ऐसे बाबा पर तो हमें कुर्बान जाना चाहिए। तो उसको बहुत उनको ये हुआ कि बाबा के प्रति, बाबा का बच्चों के प्रति प्यार, फिर उनसे जास्ती उन लोगों ने बाबा के प्रति अपना शुभ भावना शुभकामना, और ये बाबा को लिखा कि बाबा हम आप पर बलिहार जाते हैं, ऐसा बाप हमें सारे कल्प में एक बार मिलता है। तो मम्मा ने बाद में कहा कि देखो बाबा की आज्ञा मानी तो हलवा भी तैयार हो गया और बाबा ने बच्चों को खिला भी दिया। कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और कार्य करना शुरू कर देना चाहिए। कौन हमें आज्ञा देता है हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए। तो मैं हमेशा बाबा को भगवान के रूप में देखती हूँ कि बाबा भगवान की आज्ञा है, मैं भगवान की आज्ञा में, भगवान की श्री मत में अपनी मत नहीं लगाना चाहती हूँ। इसलिए बाबा जो कहे, जैसा कहे, जब कहे, वो मुझे करना ही है, ये मेरा दृढ़ संकल्प है। और यही मैं आप बच्चों को भी कहती हूँ कि आप सब भी जो बाबा कहे, जैसे बाबा कहे, हाँ जी का पाठ पक्का करना है। तो उस रीति से मैंने देखा कि बाबा ने कभी भी मामा को कुछ कहा और मामा ने हाँ जी, जी बाबा, हाँ जी, जी बाबा, इसके सिवाय मामा ने कभी भी बाबा को ऐसा नहीं कहा पुछारत करेंगे या ये करेंगे, ऐसा मामा ने कुछ नहीं कहा। फिर मामा हमारी कचहरी लेती थी, रोज मधुबन में हम बच्चों की कचहरी कराती थी। और शाम को मामा पूछती थी रात के क्लास में कि आज किसने भूल की है या किसने देखा है, सुना है, वो हाथ उठाओ। तो छोटी छोटी बात पर मामा हम लोगों का ध्यान खिंचवाती थी। तो हर एक अपनी कोई गलती है सुनाता था, कभी स्वयं की गलती स्वयं को नहीं लगती थी तो कोई दूसरा बताता था, तो वो कहता था हो सकता है मामा मैंने की हो। तो एक बार हम लोग मुरली लिखते थे ना, तो हमको रोज देर होती थी, तो सुनती तो मामा थी, लेकिन एक बार मामा उसी समय पर पहुंच गई जबकि हम देर से आ रहे थे। तो मामा ने देखा, मामा ने कहा कितना बजा है, तो मैंने कहा मामा 2:30 बजा है। तो मामा ने कहा खाने का टाइम कौन सा है, तो मैंने कहा 12 से 1:30 या 2 तक। तो मैंने कहा, मामा ने कहा फिर, मैंने कहा मामा भूल हो गई। बोला जो खाना खिला रही है उसकी बुद्धि कितना चलती होगी, बजाय बाबा के आप लोगों के नाम की माला जपती होगी कि अभी तक ये नहीं आए, ये नहीं आए। तो मामा ने कहा कि ये तो अच्छा नहीं है। तो मामा ने हमको पकड़ लिया। दूसरी बात, जब मैं रात के क्लास में हुई तो मामा ने मेरी सजा सुनाई कि देखो आपकी आपकी भूल पकड़ी गई, आपकी गलती पकड़ी गई, अब आपको क्या करना है, अब 3 दिन आपको इसी सीट पर बैठ के खाना खिलाना है सबको, तब आपको महसूस होगा कि कैसे आपकी बुद्धि चलती है जो खाना खाने देर से आते हैं। तो मैं पहले दिन जब गई तो मेरे को तो खाना खिलाना बहुत भारी लगता था, इतना बड़ा पतीला, मेरे छोटे छोटे हाथ, मैं इतना उठाऊं, खड़ी खड़ी उठाऊं और दूं, तो मेरे को बहुत मुश्किल लगता था। और सारे खाने की जो खुशबू थी वो मेरी नाक में चढ़ती थी। तो मैंने शाम को मम्मा को कहा कि मम्मा ये खाना खिलाना तो बहुत मुश्किल लगता है। तो मम्मा कुछ बोली नहीं। तो मैंने जो खाना खिलाने वाली बहन थी वो मम्मा की लौकिक माँ थी, तो मैंने रोचा को कहा, रोचा आप मम्मा को बोलो कि मैं खाना खिलाएंगी, एक बार इसको माफ कर दो, अब मैं अब उस दिन के बाद मैं रोज आया करूंगी। तो रोचा ने कहा कि मैं मम्मा को नहीं बोलूंगी, आप खुद बोलो। फिर मैंने मम्मा को बोला तो मम्मा ने कहा नहीं, 3 दिन तो आपको खिलाना होगा, 3 दिन के बाद फिर मैं आपको सजा से मुक्त कर दूंगी। तो 3 दिन मैंने पता नहीं कैसे खाना खिलाया। फिर मैंने बाबा को कहा कि बाबा मेरे को तो खाना खिलाना है। तो बोला तुमको खाना खिलाना है? बोला हाँ। बोला क्यों? मैं कहा रोज मैं देर से जाती थी ना, इसलिए मामा ने हमें ये सजा दी है। तो देखने में आता था जिस काम के लिए हम देर करते थे या कोई गलती करते थे, मामा वही सजा हमें देती थी कि उस सीट पर बैठकर तुम स्वयं अनुभव करो कि जैसे आपके संकल्प चलते हैं उसके भी संकल्प चलते होंगे। तो छोटे छोटे संकल्पों पर भी मामा हमारा अटेंशन खिंचवाती थी कि कभी भी अपने टाइम पर आना, टाइम पर खाना, टाइम पर क्लास करना, टाइम पर ये करना, एकदम जैसे मामा स्टूडेंट लाइफ होती है ना, उस रीति से स्टूडेंट लाइफ से हमें एकदम एक्यूरेट पंक्चुअल रखती थी, जो हम उसी तरह से चलते चलते आज भी ये बात मामा की याद रहती है कि पंक्चुअल रहना है, एक्यूरेट रहना है। तो छोटी बात भी मामा को बड़ी लगती थी। तो बचपन के जो संस्कार मामा ने हमारे सबके अंदर डाले हुए हैं, वो संस्कार आज भी हमें ऐसे ही हमारे जीवन में धारणा में है, और हमेशा लगता है कि मामा आज भी हमारे साथ है और हमको ये अनुभव करा रही है, आगे बढ़ा रही है। और मामा के साथ बिताए हुए दिन आज भी हमें इतने याद आते हैं, जैसे लगता है आज भी मामा बाबा की पालना में हम पल रहे हैं, चल रहे हैं। इस तरह से हमने मामा का बहुत बहुत अनुभव किया। मामा का ज्ञान और योग में बैलेंस जो था बराबर था। मामा अमृत वेले 3 बजे उठती थी और बाबा की याद में बैठ जाती थी। तो मामा हमको भी यही कहती थी कि अगर अपने विकर्म विनाश करने हैं, आत्मा को पावन बनाना है, तो अमृत वेले उठकर बाबा को याद करना है। तो जब मामा उठती थी तो मामा ये कहती, अगर आपका योग होगा तो आपकी आंख खुल जाएगी। तो सचमुच एक दिन तो मेरी आंख नहीं खुली, लेकिन दूसरे दिन जैसे ही मामा उठती थी तो मुझे ऐसे वाइब्रेशन आता था कि मामा उठ गई है। तो मैं भी मामा के साथ में उठकर बैठकर बाबा को याद करती थी कि जितना बाबा को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, आत्मा हल्की होगी और हम बाबा के साथ में बाबा के हाथ पकड़कर बाबा के वतन में जाएंगे। क्योंकि बाबा हमेशा कहता था कि समय बहुत थोड़ा है और बाबा के साथ चलना है तो पावन बन के चलना है। तो मैं देखती थी कि मामा कितना पुशारत करती है और कितना मुरली अध्ययन करती थी, पढ़ती थी, नोट्स लेती थी। तो पढ़ाई और योग में मामा एकदम नंबर वन थी। और पहले पहले जाकर जब मामा मुरली सुनाती थी तो मामा एकदम ऐसे जैसे सरस्वती अपनी ज्ञान वीणा की झनकार से हम सब आत्माओं को जैसे अंदर तक झकझोर कर रख देती थी। एक ही पॉइंट पर मामा इतना अच्छा समझाती थी कि जैसे वो मन बुद्धि में बैठ जाता था। फिर जब बाबा आता था उस समय मामा ऐसे बन जाती थी कि जैसे सुप्रीम टीचर आया हुआ है और मैं स्टूडेंट हूँ। तो मामा अपना मुख बाबा की तरफ करके ऐसे बैठती थी जैसे छात्र को वे बाबा जो सुना रहा है वो मामा जैसे अपने अंदर धारण कर रही है। तो उस रीति से देखा कि जो बाबा सिखाता था, जो बाबा बताता था, जो बाबा कहता था, मामा प्रैक्टिकल में उस रूप में चलती थी, बोलती थी, देखती थी, एक्यूरेट बाबा को फॉलो करती थी। तो मामा ने कहा कि देखो, मैं हमेशा ये समझती हूँ कि ये जो डायरेक्शन दे रहा है, जो पढ़ाई पढ़ा रहा है, वो हमारा सुप्रीम टीचर हमको पढ़ा रहा है। ये पढ़ाई ना कोई शास्त्रों में है, ना कोई वेदों में है, किसी में भी नहीं है। ये ज्ञान सागर परमात्मा खुद हमें पढ़ा रहा है। तो इस पढ़ाई पर हमारा पूरा पूरा अटेंशन होना चाहिए। क्योंकि आप देखती हो कि बाबा की मुरली में एक बात नहीं आती है, बाबा की मुरली में चारों ही सब्जेक्ट आ जाते हैं। ज्ञान की कोई बातें भी बाबा बताता है, फिर योग की स्थिति कैसी होनी चाहिए, कैसे आपका योग होना चाहिए कि एक बाबा के सिवाय और कोई याद ना आए। भिन्न भिन्न रीति से बाबा कहता था, स्वदर्शन चक्कर फिराओ। तभी कहता था कि बाबा को एकदम बीज रूप बन के याद करो। कभी बाबा कहता था ज्वाला रूप में बैठो। तो भिन्न भिन्न रीति से बाबा हमको याद की यात्रा पर ले जाता था, सिखाता था। तो ज्ञान की पॉइंट्स, योग की पॉइंट्स, फिर कोई न कोई धारणा की पॉइंट्स में मुरली के अंदर होती थी। कि जैसे क्रोध नहीं करना चाहिए, जहाँ क्रोध होता है उस घर में जो मटके होते पानी के वो भी सूख जाते हैं। तो कभी मुंह के ऊपर कि मुंह बंदर के समान होता है, तो मुंह भी नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए, कोई अच्छी चीज देखी खा ली। देह अभिमान आपका सबसे बड़ा शत्रु है। तो बाबा की मुरली में चारों ही सब्जेक्ट होते थे। सेवा के प्लान भी बाबा बताता था कि कैसे कैसे सेवा करो, पहले पहले दो बाप का परिचय दो, आत्मा का अनुभूति कराओ, फिर उसके बाद आगे बढ़ो। तो मम्मा कहती थी कि देखो बाबा की मुरली में चारों सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं, अगर मुरली अटेंशन से पढ़ेंगी ना तो आपको चारों सब्जेक्ट अच्छी तरह से दिखाई देंगे, समझ में आएंगे, अंडरलाइन करके पढ़ो देखो। तो मम्मा हमसे कहती थी जब आप मुरली पढ़ती हो ना तो अपने साथ में कॉपी लो, उसमें जो ज्ञान की बात है वो एक तरफ लिखो, दूसरे पेज पर योग की पॉइंट लिखो, तीसरे पेज पर धारणा की पॉइंट लिखो और चौथे पेज पर सेवा की पॉइंट लिखो। इस तरह से बाबा मम्मा ने हमें बाबा की मुरली में क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है वो हमें सिखलाया। और उससे हमें ये पता चला कि आज बाबा ने ज्ञान की कौन सी पॉइंट विशेष सुनाई है, आज बाबा ने योग के लिए लक्ष्य हमें क्या दिया है, आज बाबा ने हमारी को धारणा की पॉइंट क्या दी है और आज हमें सेवा कैसी करनी है, जिस सेवा की रिपोर्ट भी हमको बाबा को देनी है। तो इस रीति से मामा ने हमें मुरली पढ़ना, मुरली से पॉइंट निकालना, ये सब हमको अच्छी रीति से मामा ने सिखलाया। जो आज भी जब हम मुरली पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं आज बाबा ने ज्ञान की बात कौन सी कही, आज बाबा ने योग की बात कौन सी कही और आज बाबा ने धारणा के ऊपर कौन सी बात कही और बाबा सेवा के लिए क्या कह रहा है। तो ये मुरली पढ़ना, मुरली का एहसास निकालना, ये सब मामा ने हमको उस समय सिखलाया जबकि अभी हम छोटे ही थे। तो छोटेपन के संस्कार आज भी हमारे इस काम में आ रहे हैं। जब मुरली पढ़ती हूँ तो ये चारों बातें मुरली के अंदर जो है वो हमें ध्यान में आती हैं। तो इस रीति से मामा ने हमें मुरली पढ़ना, मुरली समझना, मुरली लिखना, मुरली में इंटरेस्ट ये सुनाया। फिर योग के लिए मामा का बहुत अटेंशन रहता था और इतना रहता था कि कहते हैं कि कुछ भी हो जाए आपकी लगन इतनी लगी हुई होवे, इतना आप देही अम्मानी होकर बैठो, एक बाबा दूसरा न कोई ऐसा याद आवे ऐसा बैठो। तो जब हम योग में बैठते थे ना तो मामा की दृष्टि, बाबा की दृष्टि हमें जैसे देह से पार ले जाती थी, एकदम उड़ा देती थी, एकदम न्यारा बना देती थी। और समय हम अनुभव करते थे कि जैसे हम ऊपर बैठे हुए हैं, ऊपर बैठ के हम नीचे सब देख रहे हैं, जैसे दूर बैठे हुए साक्षी होके देख रहे हैं। फिर इतना खो जाते थे, इतने लवलीन हो जाते थे कि मम्मा बाबा बार बार कहते थे बच्चे आओ, बच्चे नीचे आओ, बच्चे आओ, बाबा बुलाता है, मम्मा बुलाती है। तो ऐसा लगता था ये बहुत दूर से हमें कोई आवाज दे रहा है, नीचे बुला रहा आओ। फिर जब हम तब भी नहीं आते थे ना तो बाबा और मम्मा दोनों सिर पे हाथ फेरते थे, बच्चे नीचे आओ, समय हो गया है, बाबा बुलाता है, मामा बुलाती है। इस प्रकार से योग का इतना गहरा अनुभव मामा और बाबा ने हमें सिखलाया, जो आज भी जैसे कहते लोग हमारा योग नहीं लगता है, हमें योग में व्यस्त के संकल्प आते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हमारे वो बचपन के जो संस्कार कि योग से विकर्म विनाश होते हैं, योग से आयु बढ़ती है, योग से हल्कापन आता है, योग से आत्मा पावन बनती है, ये अनुभव हमें योग की स्थिति से हुए हैं और होते रहते हैं। तो वो संस्कार भी जैसे मामा ने हमारे पक्के कर दिए। और इसी तरह से मामा जितनी गंभीर थी उतनी मामा रमणीक भी थी। तो कोई भी बात होती थी तो मामा से हम लोग बहुत अच्छी तरह प्यार से रमणीकता से मामा बात करती थी, लेकिन जब क्लास में होती थी, ऑफिशियल होती थी तो मामा बहुत गंभीर होती थी। तो गंभीरता और रमणीकता का भी हमने बैलेंस मामा में देखा कि मामा कैसे गंभीर, जितनी गंभीर है उतनी मामा रमणीक है। रमणीकता की भी मामा की कई पॉइंट्स, जैसे साधारण होके चलना, बच्चों के साथ में बैठना, कोई चुटकुले भी सुनना, कोई कहानी भी सुनना, और उनमें हमको फिर उसमें से इसमें ये ज्ञान था, इसमें ये ज्ञान था, इसमें ये ज्ञान था, तो हर एक बात को मामा ज्ञान की तरफ ले जाती थी, और ज्ञान की तरफ ले जाकर हमें ऐसा शिक्षा दे देती थी कि भाई हंसी की बात से भी ये उठाओ, इस कहानी से भी तुम ये उठाओ, गुण उठाओ। तो हर बात से मामा हमें गुण उठाना सिखाती थी। एक बार की बात ये है कि एक बार एक सरदार जी आए वहाँ पर, और वहाँ पर मधुबन में रहे, क्योंकि उनकी जुगल जो थी वो बंधेली थी, पहली बार अपने पति को लेकर आई थी। तो बस हम लोग उनसे ज्ञान से छोटी छोटी बातें करते थे। तो एक बार जब वो जाने लगे तो मामा ने कहा कि आप इनको बस स्टैंड तक छोड़ के आओ। तो मैंने कहा मामा मैं क्यों जाऊंगी, नहीं मामा कहती ना छोड़ के आओ। मैं वहां गई तो वहां एक भाई कमल के फूल बेच रहा था, तो मेरे पास तो पैसे नहीं थे। तो मैंने उस सरदार जी से पूछा, मैंने कहा सरदार जी पैसे हैं? उसने कहा हाँ हैं। तो मैंने कहा मैंने कमल के फूल खरीद दिए। तो उसने एक रुपए में चार कमल के फूल खरीदे और मेरे को दिए, कहा लो देव कन्या। तो मैंने एक फूल उसको दिया, मैंने कहा देखो सरदार जी आप दुनिया में जा रहे हो, और दुनिया में जा रहे हो ठीक ठाक रहना। ये कमल है ना, ये कमल ऐसे है जैसे जल में रहते, जल से न्यारा रहता है ना, ऐसे आप दुनिया में रहना, काम धंधा करना, लेकिन दुनिया में फंसना नहीं, लगाव नहीं रखना किसी बात में। उसको ऐसे शिक्षा दे के बस मैं विदा करके मैं आई। तो मेरे पास तीन फूल थे, तो एक मैंने मामा को दिया। तो मामा ने कहा ये फूल तुम कहाँ से लाई? तो मैंने कहा बस स्टैंड से एक आदमी बेच रहा था तो मैं लेकर आई। तो मामा ने कहा कि कहाँ पैसे किससे लिए? मैंने कहा पैसे सरदार जी से ले लिए। तो बोला सरदार जी से क्यों लिए? मैंने कहा मेरे पास तो थे नहीं, फिर मैंने उसको देना था ना। तो मामा मैंने उसको दिया, ज्ञान दिया कमल का फूल देकर। मैंने उसको कहा कि कमल जैसे न्यारा प्यारा रहता है ना जल में रहते, आप भी संसार में जा रहे हो, संसार में रहते न्यारे प्यारे रहना, काम क्रोध लो मोह अहंकार से मुक्त रहना, कहीं फंसना नहीं। तो मामा ने कहा ये तो ज्ञान तो तुमने ठीक दिया, पर पैसे उससे क्यों लिए? मैंने कहा मेरे पास थे ही नहीं ना, इसलिए दिए। तो मैंने कहा मैंने तो एक फूल कहा था, उसने मुझे चार लेके दिए, एक रुपए के चार फूल। तो मैंने कहा ठीक है, एक मैं आपको दूंगी, एक मैं बाबा को दूंगी, एक मैं रख लूंगी। तो मामा ने कहा कि देखो ये बात तो तुमने अच्छी करी, लेकिन कभी किसी से मांगना नहीं चाहिए पैसा उससे। मैंने कहा पर मेरे को उसको देना था ना, इसलिए लिया, हमारे पास तो था ही नहीं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने मांगा थोड़ी है, उसको फूल खरीद के दिया है। तो लेकिन मामा ने कहा नहीं, किसी भी बाहर वाले से कुछ लेना नहीं है, बाबा कहता ना मांगने से मरना भला, इसलिए लेना नहीं है। तो फिर मैंने समझ लिया कि मैंने ये गलती करी, जो उसका पैसा मांगा उससे ही उसने मुझे लेके दिया, पैसा तो मैंने हाथ में नहीं लिया पर उसने लेके दिया। तो उस रीति से मैंने ज्ञान भी दिया वो भी दिया, लेकिन मामा ने शिक्षा दी कि कभी ऐसे किसी से लेना नहीं है या मांगना नहीं है या कुछ नहीं करना है। तो उस रीति से छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर मामा का जो अटेंशन होता है ना वो बहुत बड़ा अटेंशन होता है। तो छोटी बातें जब बड़ी बन जाती हैं तो कड़ा संस्कार बन जाती हैं, और कड़े संस्कार को खत्म करने में फिर बहुत मेहनत लगती है। इसलिए मामा हमेशा ध्यान रखती थी कि कोई भी बात ऐसी ना हो वे जो संस्कार उसका कड़ा बन जाए, फिर कड़े संस्कार को मोल्ड करने में मेहनत लगे। इसलिए मामा छोटी छोटी बातें भी हम लोगों की देखती थी, सुनती थी, अटेंशन दिलाती थी, और उस स्थान पर स्थित करके हमें सिखलाती थी कि अपने मन के विकारों को, मन की भावनाओं को, मन के संकल्पों को कैसे आप बदलो, कैसे आप परिवर्तन करो। इस रीति से मन का परिवर्तन, दृष्टि का परिवर्तन, वाणी का परिवर्तन, कर्म का परिवर्तन, ये सब मामा हमें सिखलाती थी। और हर चारों तरफ से हर काम में मामा हम लोगों को भेजती भी थी, सिखलाती भी थी, बताती भी थी, तो आज राउंड बनाती थी। और हमने देखा कि पहले तो हमारे वहाँ 3 दिन भोग लगते थे, एक दिन सोमवार को लगता था सोमनाथ बाबा का, मंगल को लगता था विष्णु भगवान का दिन है, गुरुवार को लगता है बुधवार को लगता था मामा का दिन है, और वीरवार को लगता था गुरुवार के दिन बाप दादा को भोग, और संडे के दिन लगता था बच्चों का भोग। तो अपने पास तो रोग भोग होता था, लेकिन भोग हमेशा मामा बनाती थी। बाबा कहता था भोग मामा बनाएगी, क्योंकि मामा याद में रहने वाली ऐसी बच्ची है मेरी जो बाबा के सिवाय कहीं उसकी बुद्धि जाएगी नहीं। तो बाबा को जो भोग स्वीकार कराना है वो ऐसा कराना है जो एकदम पवित्र हो, पवित्र मन से, पवित्र दृष्टि से, पवित्र हाथों से ये भोजन बनेगा तो बाबा को भी खिलाया जाएगा, जो खाएंगे उनका भी मन पवित्र होगा। तो मामा जिस समय भोग बनाती थी उस समय मामा बात नहीं करती थी, बस भोग पर ही मामा की दृष्टि होती थी, और उसको जब तक संपन्न नहीं कर लेती थी तब तक मामा वहां से हटती नहीं थी। तो देखा कि मामा ऑलराउंड कैसे थी, खाना बनाते हुए बाबा की याद में बनाती थी, जिसको देख के जब भी कोई भोजन बनाता था उसमें बाबा की याद में बैठ के भोजन बनाता था। तो भोजन के अंदर ताकत भी रहती थी और थोड़े में ही सब कार्य संपन्न हो जाते थे। तो इस रीति से छोटी छोटी बातों को भी मामा ने हम बच्चों के आगे ऐसे रखा, इतनी सरल रीति से रखा, जो एक एक बच्चे के अंदर बाबा, बाबा की याद, बाबा की शिक्षाएं, ये ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं, ब्राह्मण जीवन, ये सब जो है बच्चों के आगे क्लियर था। और इतना नशा था उनके अंदर, इतनी खुशी थी उनके अंदर, और इतना ही प्यार था बाबा मामा के लिए, यज्ञ के लिए, जो सब इकट्ठे खाते थे, इकट्ठे बैठते थे, इकट्ठे सुनते थे, जैसे इतना बड़ा संगठन मामा मामा ने तैयार किया हुआ था, जो बाबा कहे पहले मामा और मामा कहे पहले बाबा। तो पहले आपका पाठ भी बाबा मामा ने एक दूसरे को आदर रिस्पेक्ट डिगार देकर ये सिखलाया कि पहले आपका पाठ पक्का करना है, पहले आप में आप ही पहले बन जाते हो। तो उस रीति से ये मामा बाबा ने प्रैक्टिकल में करके दिखलाया, क्योंकि कहते ने जैसे कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर और भी करेंगे। तो मामा बाबा ने हमें कुछ सिर्फ डायरेक्शन नहीं दिया, उन्होंने करके सिखलाया, और जैसे वो करते थे उनको देखकर हम सब मामा बाबा को फॉलो करते थे। तो मामा सबसे पहले बाबा की फॉलोअर थी, और मामा ने फॉलो करके हम सबको ये सिखाया कि कैसे बाबा जो कहे जैसे कहे उसको फॉलो करना है। तो इस रीति से मामा के साथ गुजारे हुए दिन, गुजारा हुआ समय आज भी हमें याद रहता है। और मामा का जब दिन आता है तो मुझे बहुत बहुत मामा की याद आती है कि कैसे मामा ने हमें छोटे पद से बचपन से सिंगारा संवारा, छोटे थे लेकिन हर बात ने मामा ने आगे रखा। बाबा कहती थी बड़े तो बड़े छोटे समान अल्लाह, तो अपने आप को यही समझो कि ये न सोचो मैं छोटी हूँ, मैं समान अल्लाह हूँ। तो ये सदा याद रखेंगी ना तो सदा आगे बढ़ती रहेंगी, अलबेलापन नहीं आएगा। सदा ये याद रखेंगी मुझे बड़े तो बड़े हैं लेकिन छोटे समान अल्लाह है। तो बाबा भी छोटे छोटे बच्चों को बहुत बहुत आगे बढ़ाता था, और मामा भी छोटे बच्चों को ऐसे योग का, ज्ञान का शिक्षा देती थी, सिखलाती थी, जो मामा एक बार सिखला दे तो जीवन भर वो बात भूलती नहीं थी। तो आज भी मामा की शिक्षाएं, मामा की धारणाएं, मामा के बोल मेरे कानों में गूंजते रहते हैं कि कैसे मामा ने मेरी पालना की, कैसे मामा ने मुझे सिखाया, मामा के प्यार ने मुझे आगे बढ़ाया। तो उस रीति से मामा की यादगार आज भी मेरे दिल के अंदर कायम है। मामा आज भी जैसे मेरे साथ है। ओम शांति।